तृतीय खंड, प्रकृति और पुरुष। शेखर था और सरस्वती थी और कहीं कोई नहीं था। जिसे हम संसार कहते हैं उसका अस्तित्व मिट गया था। होने को बहुत कुछ था, वह अवर्ण्य वातावरण था जो तब उत्पन्न होता था जब शेखर सरस्वती को अकेला पाकर उससे निर्बाध बातचीत करने लगता था। वह आनंद था जो बात को उत्तर ना पाकर भी केवल यही जानने में था कि सरस्वती ने उसकी बात सुन ली है। वह विस्मय था कि सरस्वती के पास क्या इतना कुछ सोचने को है जो वह शेखर को नहीं कह सकती, जबकि वह शेखर की ऐसी बातें कहती है जो और किसी के आगे नहीं कहती। और वह घीच थी जो तब भभक उठती थी जब वह सरस्वती से कुछ कहना चाहता था और पाता था कि वह रसोई में कुछ काम में लगी है, या छोटी बहन के, जिसका नाम कमला रखा गया था, लते धो रही है, या यूं ही सिलाई कढ़ाई के लिए माँ के पास बैठी है। और माँ थी। शेखर को लगता था कि जिस प्रकार से वांछित है, प्रिय है और समझने और सहानुभूति करने वाला है उसका पूंजीभूत रूप सरस्वती है, उसी प्रकार जो अवांछित अप्रिय ना समझने वाला और कठोर है उसका साकार रूप एक घनीभूत विघ्न उसकी माँ है। प्रत्येक काम में जब भंग होता था तो खोजकर शेखर पाता था कि उसकी जड़ में कहीं पर माँ है, वहीं सरस्वती की रसोई में लगाती है, वहीं कमला के लते धुलाती है, वहीं कढ़ाई करने को कहती है। शेखर को नहीं समझ आता कि क्यों लड़कियों को वे सब काम सीखने चाहिए, नहीं तो उनकी कद्र नहीं होती। और जब सरस्वती शेखर के पास होती है तब तो वहीं उसे बुला लेती है शेखर के जानबूझकर, क्योंकि वह कई बार शेखर को चिड़चिड़े स्वर में कहती है, क्या हर समय सरस्वती की बगल में छिपा रहता है भाइयों के साथ बैठे तो? पिता ने शिकायत के स्वर में कहते थे, या कोई आदमी है इसे तो लड़की बनना था, सूतन पहनकर बैठा करे। भाई भी चिढ़ाते हैं, बहन जी की दुम, बहन जी की दुम। लेकिन सरस्वती ने कभी उससे कुछ नहीं कहा। जब भाई चिढ़ाते हैं तब वह मुस्कुरा भी देती है। कभी-कभी शेखर से कहती है, देख तुझे सब चिढ़ाते हैं। तब शेखर के प्राण मुंह को आ जाते हैं कि कहीं बहन भी उसका मजाक करते हुए हंस ना दे, कहीं उसका संकेत भर भी ना कर दे, नहीं तो। और हाँ, थी सरस्वती के प्रति शेखर की व्यापक कृतज्ञता। शेखर नास्तिक है और मूर्ति पूजक है, और सरस्वती ही वह उपास्य मूर्ति। उपासना जब हद तक पहुँचती है तब उपास्य ठीक उतना ही मानवीय होता है जितना कि उपासक, बल्कि उपासक के लिए तो वह उसी का एक प्रक्षेपण मात्र रह जाता है जो उसके भीतर ना होकर बिल्कुल घटनावश उसके सामने हो गया है। और इस सामने होने में जाने कैसे अस्पृश्य हो गया है, जैसे शीशे में अपना प्रतिबिंब पर साथ ही विस्तीर्ण और आबाद भी हो गया है, वैसी ही थी सरस्वती। शेखर को कभी लगता ही नहीं था कि वह भिन्न है या उसकी अनुभूतियाँ भिन्न है। उसे भूख लगती तो वह कहता, बहन रोटी खाओगी, और जब वह सोने जाता तो कहता, बहन तुम्हें नींद लगी है। पर सरस्वती की ओर से या एक सम्मिश्रण इतना एकांतिक नहीं रहा था। वह आजकल जाने क्यों चिंतित सी रहती थी, जाने क्या मन मन में फेरती रहती थी। शेखर पूछता था, झुंझलाता था, लेकिन देवता पर झुंझलाहट कितनी देर। फिर वह सोचने लगता, बहिन मुझसे बड़ी ना होकर एक आध वर्ष छोटी होती, इतनी की कहने को मैं बड़ा होता, पर होते हम समवयस्क तो कितना अच्छा होता, क्योंकि किसी बहुत गहरे, बहुत छिपे और अप्रकट रूप से वह एक बड़े सत्य की ड्योढ़ी पर खड़ा था कि आदमी बनते ही तो वे अपने को प्यार करने वाली, अपने से छोटी किसी स्त्री के लिए बनते हैं जो उनमें आस्था रखती है, और जिस आस्था के योग्य होने की चेष्टा में वे जान लड़ा देते हैं। माताएं हैं, होती है, अपना स्थान रखती है, लेकिन बनाती है वे बहनें या बहनों के बराबर, और कन्याएं जो बहनों के बराबर होने में बहनों से बढ़कर होती है। माँ जन्म देती है, परवरिश देती है, पिता बुद्धि देते हैं, लेकिन व्यक्तित्व अपने ही को सहने की सामर्थ्य वहाँ से नहीं मिलती। कभी शेखर बहन से कहना चाहता, बहन मुझे मूर्ति उतनी नहीं चाहिए, मुझे मूर्ति पूजक चाहिए। मुझे कोई ऐसा उतना नहीं चाहिए जिसकी ओर मैं देखूं, मुझे वह चाहिए जो मेरी ओर देखे। या नहीं कि मुझे आदर्श पुरुष नहीं चाहिए, पर उन्हें मैं स्वयं बना सकता हूँ। मुझे चाहिए आदर्श का उपासक, क्योंकि वह मैं नहीं बन सकता। अपने लिए ईश्वर रचना मेरे बस में है, लेकिन मेरी ईश्वरता का पुजारी वह नहीं। पर यह विचार उसके मन में स्पष्ट ना होते, वह स्वयं उन्हें ना समझता और जीवन चलता जाता। जो आस्तिक है उसके लिए ईश्वर कहाँ नहीं है, और ईश्वर बिना जीवन की कल्पना उसके लिए कब संभव है। लेकिन ईश्वर का घर जो आकाश है, उसके आगे भी बादल जाते हैं। शेखर के पिता दौरे पर गए थे। एक दिन शेखर ने उनकी डाक पर पत्ते ठीक करते हुए एक कार्ड पढ़ा और पढ़कर सन्न रह गया। सरस्वती की शादी की बात थी। शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। जाने कौन से कब के पढ़े किसी किस्से का या एक वाक्य शेखर के सामने नाचने लगा। उसे लगा इसमें एक कठोर निर्णय है। शादी के बाद अपने पति के घर चली गई, बस चली गई। जीवन समाप्त हो गया। हर एक को ऐसे ही जाना है, और उस किस्से में या ऐसे लिखा था जैसे बिल्कुल मामूली बात है, बस चली गई और क्या। शेखर ने डाक पट की और घर घर के बाहर चला गया। उन दिनों शेखर के पिता की बदली दक्षिण में हो गई थी। पश्चिम घाट के पहाड़ों में ही वे रहते थे। वहाँ की पहाड़ियों में शेखर भटका किया। शेखर के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। इस वाक्य को शेखर बार बार मन में फेरने लगा और सोचने लगा, मुझे क्या है इस वाक्य से। उसने एक पेड़ की ओर देखा। पेड़ ने मानो कहा, रमा अपने पति के घर चली गई। शेखर ने एक दूसरे पेड़ की ओर देखा। उसने मानो मुस्कुरा कर ही यही वाक्य दोहरा दिया। इस प्रकार तीसरा पेड़, चौथा पेड़ अधिकाधिक ठिठाई से। तब एक ने धीरे से हिचकिचाते हुए कहा, रमा तुम भूल तो नहीं करते। और तब सबने स्वीकार स्वर मिलाकर कहा, सरस्वती अपने पति के घर चली गई। सरस्वती, सरस्वती। शेखर आखेट के मृग की तरह इधर उधर कहीं पनाह की खोज में भागने लगा। शाम हो गई, लेकिन पीछे लगे हुए उस शिकारी ने पीछा नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। अंधेरा होने लगा। तब शिकार को लगा दूर एक स्थान दिखता है जहाँ शायद वह छिप सकता है। ठीक पता नहीं है शायद, और वह घर की ओर भागा। पर घर आकर शेखर वह प्रश्न पूछ नहीं सका, और किसी से तो पूछना नहीं था, सरस्वती से ही पूछना था। फिर भी साहस नहीं हुआ। वह भरा हुआ चुपचाप रह गया। उसका नित्य का प्रोग्राम था रात को दिन भर की कामों की आलोचना करे। वहाँ भी शेखर चुप रहा। सरस्वती ने भी बात छोड़ दी। सोने के समय से कुछ ही पहले एकांत पाकर सरस्वती ने उत्सुक स्वर से पूछा, क्या है शेखर? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कुछ बात है, कहो ना। जैसे सर्दियों में नदी में नहाते हैं, वैसे ही शेखर एकदम से कह गया, तुम यही क्यों नहीं किसी से शादी कर लेती? सरस्वती का मुंह पहले लाल हो गया, फिर गंभीर हो गया, फिर शेखर के गाल पर एक हल्की चपट जमाकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। और शिकारी को पता नहीं लगा कि आश्रय मिल गया है या इनकार हो गया है। पति की खोज में 2000 मील। सब लोग लाहौर पहुँचे। तैयारी की दौड़ धूप में शेखर बीमार हो गया, और चारपाई पर पड़े पड़े ही वह सुनने लगा कि क्या क्या मिठाइयाँ बनी है, कैसी बारात आई है, कैसा दूल्हा है। कोष्ठ में रमा अपने पति के घर चली गई। नहीं, रमा नहीं, सरस्वती, सरस्वती। कोष्ठ बंद। बरातियों को कैसे उल्लू बनाया गया, पकौड़ियाँ कैसे कम हो गई, और उस समय कैसी बुद्धिमानी से काम लिया गया और दूल्हा कैसे शानदार तुर्रे वाली लुंगी बांधकर आया था। कोष्ठ में शब्द कुछ भिन्न थे, जैसे ऊंट के सिंह, कोष्ठबंद। और केवल यही उसने नहीं सुना कि सरस्वती कहाँ है, कैसी है और क्या करती सोचती है। जिस रात भांवड़े पड़ती है, उस रात शेखर ने कहा, मैं भी चलूँगा। उसे 103 डिग्री का बुखार था। सबने मना किया, पर वह नहीं माना। मेरी बहन की शादी है और मैं नहीं देखूँगा, या उसने कहा। इसके नीचे कितना गहरा अर्थ है या औरों ने नहीं समझा, पर हार उन्हें माननी पड़ी। मंडप के एक कोने में कुर्सी रखकर कंबल उढ़ाकर उसे बिठा दिया गया। वह मानो झिल्ली में छाई हुई आंखों के सामने होते हुए अर्थहीन तमाशे को देखने लगा। शेखर के चचा लाल फुलकारी में लिपटी हुई एक पोटली को उठाकर लाए और वेदी के पास आसन पर रखकर हट गए। दूल्हे के साथ सटाकर वह रखी गई थी। कोष्ठ में शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। रमा नहीं, सरस्वती, कोष्ठ बंद। इससे शेखर ने जाना कि उस पोटली के भीतर सरस्वती है, और थोड़ी देर में दूल्हे के पीछे पीछे उस पोटली ने भी बिना किसी और से भी अपना पोटलीपन कम होने दिए आगे चक्कर काट लिए। शेखर के पीछे एक बड़े से घूंघट ने आहवाज भरे स्वर में कहा, हो गई। शेखर ने लौट कर देखा, घूंघट मानो आहवाद से और भी फूला जा रहा था। और शेखर के भीतर एक स्वर ने दुर्भेद निश्चय से कहा, शादी के बाद रमा अपने पति के साथ चली गई। रमा नहीं, सरस्वती, समझे सरस्वती, उसने कहा। बस, मैं देख चुका, अब जाऊंगा। उसे वहां से हटा दिया गया। सरस्वती थोड़ी देर के लिए उसके पास आई। उस समय और कोई नहीं था। शेखर ने कितना चाहा कि मान करे, बोले ना, पर सरस्वती से, जो उस समय बिना हल्दी के भी पीली ही दिखती, उससे मान। शेखर को तो पता नहीं लगा कि वह क्या कहे। मानो पैतरा करते हुए उसने कहा, बहन, तो तुम्हारी शादी हो गई। सरस्वती ने ऐसी पंडित दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर बोली, कैसी तबीयत है? शेखर ने मुंह फेर कर घुटते गले से निकाला, सरस। सरस्वती ने उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे धीरे नीचे ले जाते हुए शेखर की आंखें बंद कर दी। यद्यपि शेखर का मुंह फिरा हुआ था, आंखें बंद करते ही उसके आंसू भी छू लिए। शेखर ने मानो पलकों के साथ हाथों को पकड़ने की चेष्टा करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद तुम चली जाओगी, तब भी कुछ नहीं होगा। सरस्वती ने कहा, तुम्हारा हाथ कहाँ है? शेखर ने अपने दोनों हाथों से बड़े जोर से उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों में दबा लिया। तब धीरे से हाथ छुड़ाकर वह चली गई। उसी रात शेखर को न्यूमोनिया हो गया। कहते हैं शादी, साध का अर्थ है आनंदित। महीने भर बाद जिस दिन शेखर चारपाई से उठने लायक हुआ, उस दिन सब लोग दक्षिण लौट गए। सब लोग और शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। रमा नहीं, सरस्वती, और सब लौट आए। महीने भर बाद शेखर के दोनों भाई कॉलेज में दाखिल होने चले गए। पीछे रह गए माँ बाप, शेखर, रवि, चंद्र, कमला, और जो शादी के बाद अपने पति के घर चली गई थी, उस सरस्वती की याद। जब शेखर के भाई वहाँ थे, तब वे हर तीसरे दिन सरस्वती को पत्र लिखते थे। सरस्वती के भी पत्र उन्हें आते रहते थे। शेखर उन्हें आए हुए पत्र सुन लेता या चुरा कर पढ़ लेता, पर उसे सरस्वती ने कोई पत्र नहीं लिखा, ना उसने ही कोई लिख पाया। पर जब वे भी कॉलेज चले गए, तब शेखर को उस बहन का समाचार पाने का कोई रास्ता ना रहा। वह कभी आशा किया करता कि सरस्वती अब स्वयं उसे पत्र लिखेगी, लेकिन भीतर कहीं उसका अंतरतम जानता था, जैसे वह नहीं लिखता है, वैसे वह भी नहीं लिखेगी। जब वह लिखेगा, तब उत्तर दे सकेगी। तब एक दिन वह पत्र लिखने बैठा। बड़ी मेहनत से ठीक आकार प्रकार का कागज चुनकर उसने आरंभ किया, पूजनिया बहिन। वह सदा से पत्र ऐसे आरंभ करने का अभ्यास ही है, लेकिन कागज पर ये दोनों शब्द देखकर वे अपने से पूछने लगा, या मैं क्या कर रहा हूँ, किसे लिख रहा हूँ, पूजनिया बहिन कौन है? उसने कागज के चिथड़े कर डाले, दूसरा लिया, कलम स्याही से भरकर सोचने लगा। कुछ सूझा नहीं, वह कलम को यूं ही घिसटने लगा। देखा, वह सूख गई है, फिर भरी और फिर सूख गई। एकाएक कलम भरकर उसने लिख डाला, सरस, लेकिन लेकिन या तो मैं अपने अंतरम में भी कहकर कांप उठता हूँ, इसे इस अश्लील ढंग से कागज पर रखूंगा और भेजूंगा उस पति के घर जिसके पास वह चली गई है। शेखर ने यह भी पत्र फाड़ डाला, और तब उसे पता लगा कि शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई का क्या अभिप्राय है। उसने माँ के पास जाकर कहा, मुझे कोई चिट्ठी नहीं भेजनी है, आप अपनी चिट्ठी भेज दीजिए। माँ ने यूं ही कहा, क्यों, बहन को चिट्ठी लिखने में हर्ज होता है? शेखर कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। शेखर को जाने क्या हो गया, वह जो कभी रोता नहीं था अब अकारण रोने लग पड़ता। कभी रोटी खाते खाते छोड़कर उड़ जाता और कमरे में आकर रोने लगता, कभी रोटी खाता जाता और आंसू पोंछता जाता। कभी माँ पूछती, शेखर आज तो तुमने कुछ नहीं खाया, तो एकाएक फूट पड़ता। कभी पिता कहते, जाओ लेटर बॉक्स में से डाक निकाल लाओ, तो उनकी खिड़की खोलकर रो उठता और उसे स्वयं नहीं पता लगता कि क्यों रोता है। वह कभी पिता पूछते, क्यों शेखर भाई, बहुत याद आते हैं, तो उसे लगता है यही कारण है कि मैं रो रहा हूँ, भाई याद आते हैं। माँ पूछती, सरस्वती के पास जाना है, तो उसे लगता वह सरस्वती को देखने के लिए ही तो रो रहा है। और कभी रविदत्त कहता, हमें यूं ही पीट देते हैं सब कोई, तो उसे लगता है कि वह इसलिए रोता है, उससे बहुत अन्याय होता है। एक दिन उसने रवि ठाकुर की एक कहानी का अनुवाद पढ़ा, छुट्टी, जिसमें लिखा था, मानवीय संसार में 14 वर्ष के लड़के से बढ़कर बला दूसरी नहीं है, उसमें ना सौंदर्य है ना उपयोगिता, उसे छोटे बालक की भांति दुलराया नहीं जा सकता, ना उसके संग की विशेष चाह होती है। अगर वह बच्चों के बालकोचित तोतले ढंग से बात करे तो उसे दूध मुहां कहा जाता है, और अगर बड़ों की सी पक्की बात कहे तो उद्धत समझा जाता है। मतलब यह है कि उसका बोलना ही प्रगभनता है। सहसा कपड़े लत्तों के माप का ख्याल ना करके इस भद्दे ढंग से बढ़ते जाना लोगों की दृष्टि में बेहुदा दिखता है। बचपन का लालित्य और कंठ की मधुरता चली जाने के लिए लोग मन ही मन उसे अपराधी समझते हैं। शेषों के बहुत से दोष क्षम्य समझे जाते हैं, पर इस अवयश के लड़के की अनिवार्य त्रुटि भी असह्य मालूम होती है। वह स्वयं भी सर्वदा इसे अनुभव करता रहता है कि वह अभी भी ठीक-ठीक जचता नहीं है, इसलिए अपने अस्तित्व पर वह सर्वदा लज्जित और क्षमा प्रार्थी सा बना रहता है। किंतु इसी उम्र में ही मन में स्नेह और सम्मान के लिए उसके हृदय में अत्यधिक व्याकुलता होती है। उसे पढ़कर उसने देखा, उसके रोने का यही कारण है। एक दिन किसी से उसने सुना, कॉलेज के जीवन में भी बड़ा सुख है और बड़ी स्वच्छंदता है। उसे ध्यान हुआ कि उसके भाई मजे में होंगे, बिल्कुल स्वच्छंद होंगे, और वह इसी बात से रोने लगा। लेकिन जहाँ वह यह निश्चय नहीं कर पाया कि वह रोता क्यों है, वहाँ उसकी यह भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी कि संसार में अन्याय ही अन्याय है, और यह अन्याय विशेष उस पर किया जाने लगा है। मानो संसार का पहिया उसी को धुरा मानकर उसके आसपास घूम रहा है। जो कुछ है केवल इसलिए है कि शेखर है, और साथ ही साथ उसकी असह्य सुनता बढ़ने लगी, वह जलने लगा उस अन्याय के विरुद्ध। एक दिन अकारण ही उसने देखा, अब वह और नहीं सह सकता। उसके मन में भाव हुआ क्या इतने बड़े संसार में मेरे लिए जगह नहीं है जो मैं यहाँ रहकर अन्याय सहूँ? और वह एक ओवरकोट, एक बिस्कुट का पैकेट, एक डबल रोटी लेकर घर से निकल खड़ा हुआ। कहाँ के लिए, उसने स्वयं नहीं जाना। उसे इतना यही मालूम था कि वह कहीं को नहीं, कहीं से जाना चाहता, कहीं से जिसे वह सदा के लिए पीछे छोड़ आया है। दिन भर चलकर वह थक कर सो गया। दूसरे दिन वह एक जलप्रपात के नीचे पहुंचा और दिन भर उसी को देखा किया, लेकिन सौंदर्य खाया नहीं जा सकता और डबल रोटी खत्म हो गई थी। शेखर जलप्रपात को देख लिया। पहले उसके प्रति आदर था, आकर्षण था, फिर उसमें एक स्वरता, परिवर्तनहीनता, इसलिए अक्षमता दिखने लगी। फिर शेखर को हुई एक ग्लानि का एक क्षोभ और वह लौट पड़ा। एक रात कहीं राह में काट कर दूसरे दिन सवेरे घर पहुंच गया। उसने घर के जीवन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके प्रति एक नए आदर और विस्मय का भाव उसके मन में हुआ। उसके पिता ने उसके भागने को और उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। उससे पूछा नहीं कि वह कहाँ गया था, क्यों गया था। अपनी ही अशांति, चित्तता, अस्थिरता शेखर के लिए असह्य होने लगी। उसे लगने लगा वह कुछ चाहता है, लेकिन क्या चाहता है या नहीं जान पाया। और इसी को जानने के लिए वह अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने लगा, अनेक रास्तों पर एक साथ ही भटकने लगा। दूर से देखा जाए तो मानवता का सारा विकास ही कम से कम अभी तक यही है। मानवता कुछ चाहती है, लेकिन जानती नहीं कि क्या, और उसे जानने की खोज में अनेक रास्तों पर एक साथ ही भटक रही है। मानो सारी मानवता अपने जीवन की गति में किसी दीर्घ वर्ष संधि पर खड़ी है और अपने से उलझ रही है। उसका यौवन, उसके कृतित्व के दिन भी आगे हैं, और उस विशाल का सा छोटा सा प्रतिरूप, समुद्र का अविरल मरमर, अपने भीतर छिपाए छोटी सी सीपी, शेखर भी अपने से उलझ रहा था और अपने को पाना चाह रहा था। उसे लगता उसके शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है, उसे लगता वह बीमार है, उसे लगता उसमें बहुत शक्ति और स्फूर्ति आ गई है, उसे लगता उसे जीवन की एक नई किस्त मिलने वाली है और वह अपने ही मद से उन्मुख कस्तूरी मृग की तरह, या प्लेग से आक्रांत चूहे की तरह, या अपनी दुम का पीछा करते हुए कुत्ते की तरह अपने ही आसपास चक्कर काट रह जाता। जब रात खूब घनी हो जाती तब शेखर उठता, दबे पांव बैठक में जाकर ग्रामोफोन उठाकर अपने कमरे में ले आता, दरवाजे बंद कर लेता और एक विशेष रिकॉर्ड को बार बार बजाया करता। किसी अंग्रेजी संगीतकार का वायलिन का रिकॉर्ड था, जिसका नाम देखने का उसे कभी ध्यान नहीं हुआ और जिसकी तर्ज असंख्य बार सुनकर भी याद नहीं हुई। लेकिन उसके आरंभ में ही, जब एक भर हुए मंद स्वर के बाद एकाएक तीखी पुकार सी होती, तब शेखर को लगता उसके इस अकस्मात बलिष्ठ तीखेपन ने मानो शेखर के बाहर कोई झिल्ली सी चीर दी है और वह रेशम के कीड़े की तरह या तितली की तरह किसी परकई बंधन से बाहर निकल आया है। और वह उसी रिकॉर्ड को कभी कभी, उस उतने अंश को बार बार बजाता जाता, और पता कि वह पूरा नया नहीं होता है, शेखर उस तल पर से भूमि पर नहीं उतरता है। वह बत्ती बहुत धीमी कर देता और कभी रोने लगता। उसके स्वप्ने भागते, ओ तू संगीत, तू कहाँ की, किसकी पुकार है, कहाँ जाने की प्रेरणा मुझे देता है। मैं जो बुद्ध हूँ, किसी मुक्ति का वचन, किसी आबाद का दिया वचन मुझे सुनता है। तब वह एकाएक रिकॉर्ड बंद करके कविता लिखने लगता, लेकिन वह समाप्त होते ही उसे लगता उसका शरीर फिर जाग उठा है। वह फिर झिल्ली के भीतर बंद गया है। अपने शरीर की मांग वह नहीं समझता, लेकिन उसे लगता वह कुछ अनुचित है, कुछ निर्दिष्ट, कुछ पापमय, और वह चाहता कि किसी तरह उसे दबा डाले, कुचल डाले, धूल में ऐसा मिला डाले कि उसका पता भी ना लगे, चाहे शरीर ही उसके साथ क्यों ना नष्ट हो जाए। वह मन उस पर से हटाना चाहता, या तो वह जानना जानता नहीं था कि इसका साधन क्या है, लेकिन कविता में रुचि थी और इसलिए उसे आशा थी कि उसमें अपने को भुला सकेंगे। वह हर समय हर प्रकार की कविता को पढ़ने लगा। उसने संस्कृत कवि पढ़े, उसने उर्दू से अनुवाद पढ़े, उसने जो कवि उसकी पाठ्य पुस्तकों में थे, टेनिशन, वर्ड्सवर्थ, शैली, कृष्णा, रोजेटी, स्कॉट, सब समूचे पढ़ डाले। फिर उसने वे कविता पढ़ने आरंभ किए जो उसकी पुस्तकें में नहीं थी, लेकिन जिनके नाम उसने पढ़े थे और सुने थे। किट्स, बॉलरन, रोजेटी, स्विनबर्न, अनुवाद में टासो और दांते तक। कुछ उसने समझा, अधिकांश नहीं समझा, लेकिन जहाँ नहीं समझा वहाँ मानो अपने को दमाने, दंडित करने के लिए और भी निष्ठा से पढ़ा। लेकिन यहाँ भी कुछ कविताएं उसके मन में बैठ गई और उसे उसी अशांति की ओर खींचने लगी। टेनिसन की लेडी ऑफ सेलाट, मैकक्वीन और इनोनी की मृत्यु की ये पंक्तियाँ, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। ओ प्रिय चरवाहे, काश की मैं बाहें तुझे बांधे होती और मेरे तृप्त होठ तेरे होठ से मिले हुए होते, और सफल चुम्बनों की तीखी बौछार में जैसे सीमाई की सरोहरों पर शिशिर की घनी वृष्टि। इन्हें पढ़कर उसका शरीर तन उठता, उसकी बाहें कांपने लगती और उसका सिर घूम उठता। और जिस दिन पहले पहल रोजेटी की दो पंक्तियाँ उसने कहीं उधर देखी, बेनेट एट द ग्लोइंग थ्रोट द ब्रिस्टेड्स हैव ग्लोब्ड लाइक फोल्डेड लिलीज डीप सेट इन स्ट्रीम, अर्थात शुम्भ्र कंठ के नीचे कुचों की गोलाई जैसे सोते के जल में अर्धमुकुलित कुमुदनी। उस दिन उसे लगा उसके भीतर एकाएक बल का इतना असह्य स्रोत उमड़ आया कि उसे रोमांच हो आया। वह विवश बाहर निकला। कुछ ना पाकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और रसोई के पीछे जाकर कितनी ही लकड़ियों की चेलियाँ बना डाली। तब आकर वह फिर लेडी नॉर्टन की एक कविता पढ़ने लगा, आई डू नॉट लव थी, और उसे लगा वह कुछ शांति पा रहा है। कुछ कविताएं ऐसी भी थी जिन्हें पढ़कर उन्हें ना समझने पर भी उसे शांति मिलती थी, यद्यपि वह बहुधा एक व्यक्ति और अस्थिर सी ही शांति होती थी। रोजेटी की ब्लेस्ड डेमोजेल की ये पंक्तियाँ, जिसका हिंदी अनुवाद है, दुर्बल मुख वाष्पसा, आग की लोसा बीत जाए, उसकी वीणा पर कांपती लंबी सांस, और मेरी आत्मा के लिए प्रणती मृत्यु के चरण चाप सी शीतल, या वे जहाँ प्राणी अर्थात प्रेमी अपनी अत्यंगता प्रेयसी की केसों का स्पर्श अनुभव करता है और एकाएक जानता है, नथिंग द ऑटोमन फॉल ऑफ लीव्स, अर्थात कुछ नहीं केवल शिशिर के पत्तों का झरना। और स्विनबर्न की कुछ कविताएं जिन्हें पढ़ते हुए वह सहसा जोर से पढ़ने लगता, उसके शब्दों में ही ऐसी बातें करने वाली लय थी। और हाँ, कालिदास का अजविलाप जो उसे अब याद आया, सरस्वती भी कई बार गाया करती थी, स्तरंगीय यदि जीवात्पहा हृदय की निहनता नाहन्ति माम, और मानो उसका सारा व्यक्तित्व ही मृत्यु मांग उठता था और दोहराता था कि नाहन्ति मार्म। इस प्रकार शेखर अपने ही प्रवाह में बहा जा रहा था, लेकिन बीच बीच में ऐसे भी क्षण आते थे जब सब कुछ उसके लिए जैसे बहुत स्पष्ट, बहुत सीधा, बहुत परिचित हो उठता था। वैसे क्षण जैसे एक क्षण का चित्र रोजेटी ने भी अपनी एक कविता में खींचा है, आकस्मिक आलोक। और तब इस अत्यधिक प्रकटता से ही उसे दुख होता था। एक दिन रोजेटी पढ़ते पढ़ते उसने किताब बंद कर दी और आंखें भी बंद करके गुनगुनाने लगा, सच ए स्मॉल लैम्प इल्यूमिनियर्स ऑन हिज हाईवे, सो डाइमली सो फ्यू स्टेस इन फ्रंट ऑफ माई फिट, येट शोज मीडेट हर वे स्पार्टेड फ्रॉम माई वे आउट ऑफ साइट बिहोन्ड लाइट एट वाट गोल मे वी मेट। अर्थात इस राजपथ पर एक बहुत छोटा सा दीप आलोकित करता है, बहुत क्षीण प्रकाश में, बहुत थोड़े से कदम मेरे सामने, किंतु फिर भी स्पष्ट दिखता है कि मेरा मार्ग उसके मार्ग से अलग है, क्षितिज के पार, आलोक से परे, किसी ध्रुव पर फिर हमारा मिलन होगा। तभी उसे वैसा एक क्षण प्राप्त हुआ, उसके भीतर किसी ने कहा, शेखर यू आर इन लव, अर्थात शेखर तुम प्रेम करते हो। और फिर समूचे शरीर ने तन कर कहा, हाँ हाँ मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन किससे? कुछ दिन बाद उसने कहीं एक कविता पढ़ी, ए लेट थ्री एज एंड आई एम डेट पुअर ग्रूम डेट्स फॉलिंग इन लव एंड नॉन नॉट विथ होम। अर्थात एक व्यक्ति है और मैं ही वह अभागा हूँ जो प्रेम करता है और जानता नहीं कि किससे। उसे क्रोध हो आया, मेरी या जो अभूतपूर्व दशा थी वह क्यों और किसी को भी हो चुकी है। तब शेखर ने कहा, नहीं मैं प्रेम नहीं करता, नहीं करूँगा।